नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष बहस। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियां इसके असली महत्व और गौरव को समझेंगी। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। कहा, हस्तशिल्प केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। इंडिगो संकट के बाद सरकार ने हवाई अड्डा संचालन की गहन समीक्षा की। एयरलाइन की उड़ान अनुसूची में 5% की कमी की गई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 के नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की। भारत के 240 खिलाड़ी शामिल। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने कहा कि अमर कृति भारत माता के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना जागृत करती है।
वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति माँ भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है।
श्री शाह ने कहा कि वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को माता के रूप में पूजने की परंपरा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना की। गृहमंत्री ने कहा कि दोनों सदनों में वंदे मातरम पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियों को इसके वास्तविक महत्व को समझने में मदद मिलेगी। सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी और गुणवत्ता उल्लंघन पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत पिछले 7 महीनों में उर्वरक डीलरों को 12,814 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने ये जानकारी दी।
1 अप्रैल से लेकर के अभी 28 नवंबर तक ब्लैक मार्केटिंग में शो कॉज नोटिसेस जो हैं वो 5,058 हुए, FIRs लॉज 142 और लाइसेंसेस कैंसल्ड 3,732।
रसायनों की कमी से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार पारदर्शी और वास्तविक समय पर आधारित एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से उर्वरक की आवश्यकता पर निगरानी रख रही है। सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी और गुणवत्ता उल्लंघन पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के तहत पिछले 7 महीनों में उर्वरक डीलरों को 12,814 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी के मनीष तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR लागू करने के कारणों को सदन में रखना चाहिए।
सरकार को चुनाव आयोग से कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है कि SIR एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है।
भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष हाल ही में संपन्न बिहार चुनावों में हुई भारी हार से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए SIR का मुद्दा उठा रहा है।
संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हूँ, आज भी SIR की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, SIR उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं।
श्री जायसवाल ने कहा कि वोट चोरी का पहला मामला 1947 में हुआ था, जब पूरी कांग्रेस कार्यसमिति सरदार पटेल के साथ थी, फिर भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होने पर ही सुधार संभव है। उन्होंने मतदान के लिए फिर से मतपत्रों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। सरकार ने कहा है कि उसने वामपंथ उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और अगले वर्ष मार्च तक इसे समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वामपंथ उग्रवाद न तो देश के संविधान में और न ही लोकतंत्र में विश्वास रखता है।
प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के सफल मार्गदर्शन में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद का सफाया हो जाएगा। पहले की सरकारें राज्य की समस्या मानती थी इसको, जिसके कारण केंद्र ने वामपंथी उग्रवाद पर न कोई ठोस नीति अपनाई, लेकिन मोदी सरकार ने वामपंथी के खिलाफ एक समग्र और प्रभावी ठोस नीति बनाई है।
श्री राय ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच वामपंथ उग्रवादी हिंसा की 16,000 से अधिक घटनाएं हुई, जो पिछले 10 वर्ष में घटकर लगभग 7,000 रह गई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने बताया है कि इस साल देश में 35 करोड़ 70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल से 7.65% अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत से ये संभव हो सका है।
2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2004 और 2014 के बीच राज्य आपदा मोचन कोष का बजट केवल 38,000 करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपए कर दिया है। केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार मजबूत विमानन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिगो के मौजूदा संकट पर लोकसभा में श्री नायडू ने बताया कि इंडिगो को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनियों को नोटिस जारी किया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कड़ी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी। श्री नायडू ने इस बात पर भी जोर दिया कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक सरकार पूरी तरह सतर्क रहेगी। श्री नायडू ने इस व्यवधान के लिए अंदरूनी रोस्टरिंग संबंधी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराया। सदन में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने हाल ही में उड़ानों में आई बाधाओं और रद्द किए जाने के मद्देनजर इंडिगो को सभी क्षेत्रों में अपनी उड़ानों में 5% की कटौती करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
ये रद्दीकरण विशेष रूप से अधिक मांग और कम आवृत्ति वाली उड़ानों पर लागू किया गया है। डीजीसीए ने कहा कि इस साल शीतकालीन अनुसूची के अनुसार एयरलाइन के प्रत्येक सप्ताह में 15,000 से अधिक उड़ानों की स्वीकृति दी गई थी। इसके अनुसार नवंबर में 64,000 उड़ानों की उम्मीद थी, लेकिन इंडिगो ने इस अवधि के दौरान 60,000 से भी कम उड़ानें संचालित की। इसके अलावा गर्मियों में एयरलाइन को 351 विमानों की अनुमति थी, जिसे 6% बढ़ाकर 403 किया गया था, लेकिन एयरलाइन ने अक्टूबर में 339 और नवंबर में 344 उड़ानें ही संचालित की। महानिदेशालय ने बताया कि उड़ानों में बढ़ोतरी के बावजूद इंडिगो संचालन अनुसूची में अपनी दक्षता नहीं दिखा सकी। डीजीसीए ने इस एयरलाइन को कल शाम 5 बजे तक संशोधित अनुसूची जमा करने को कहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से हवाई अड्डों पर जाकर एयरलाइन संचालन और यात्री सेवाओं की जांच करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यात्रियों के फीडबैक लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी और परेशानी को तुरंत दूर किया जाए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य एनडीए सांसद उपस्थित थे। पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सभी क्षेत्रों में सुधार करने पर जोर दिया।
देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, कानून नियम अच्छा है लेकिन सिस्टम को ठीक करने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा नियम नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिकों को परेशान करे। कानून लोगों के लिए बोझ नहीं, लोगों की सुविधा के लिए होना चाहिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान असाधारण कलात्मक निपुणता और भारत की समृद्ध तथा विविध हस्तशिल्प विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कला लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और एक दूसरे से जोड़ती है।
हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हस्तशिल्प क्षेत्र में 68% महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास से महिला सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। विदेश मंत्रालय आज नई दिल्ली में 5वां अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति व्याख्यान आयोजित करेगा। यह वार्षिक कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान और विदेश मंत्री तथा प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति को आकार देने के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया जाता है। भारत ऑपरेशन सागर बंधु के अंतर्गत चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका को निरंतर मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय सेना श्रीलंका के सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सहायता तथा उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह आज केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में भाग लेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे कल से शुरू हुए 5 दिवसीय सत्र में 193 देशों के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच उड़ीसा के कटक स्थित बारोबाटी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया है कि हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों चोट के बाद इस श्रृंखला में वापसी के लिए तैयार हैं। श्रृंखला का दूसरा मैच बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में होगा। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL क्रिकेट 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। नीलामी के लिए पंजीकृत 1390 में से 350 खिलाड़ियों को छांटा गया है। इनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इस सूची में ऐसे 224 भारतीय खिलाड़ी और 14 विदेशी खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। नीलामी की प्रक्रिया 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगी। 31 विदेशी खिलाड़ियों सहित 77 खिलाड़ियों के लिए नीलामी हो सकती है। अभी तक टीमों ने 173 खिलाड़ियों को अपनी टीम में बरकरार रखा है। और अंत में बात हॉकी की। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में आज चिली में भारत का मुकाबला उरुग्वे से होगा। महिला टीम ने कल अपने आखिरी क्वालिफिकेशन मैच में वेल्स को 3-1 से हराया था।
केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में 25 सड़क परियोजनाओं के लिए लगभग 69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य राज्य के 30 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह वाले क्षेत्रों में सड़क संपर्क बढ़ाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष बहस। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा से आने वाली पीढ़ियां इसके असली महत्व और गौरव को समझेंगी। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में वर्ष 2023 और 2024 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। कहा हस्तशिल्प केवल सांस्कृतिक पहचान नहीं बल्कि लोगों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। इंडिगो संकट के बाद सरकार ने हवाई अड्डा संचालन की गहन समीक्षा की। एयरलाइन की उड़ान अनुसूची में 5% की कमी की गई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2026 की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की। भारत के 240 खिलाड़ी शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।